नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग। नमस्कार कुलविंदर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
तो ढेर सारी चर्चा करेंगे कुलविंदर जी से, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में रिंकू सिंह ने स्वर्ण और सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आगाज कल से, पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच। और जूनियर विश्व निशानेबाजी में भारत का आज 7 और पदक जीतकर दबदबा कायम। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में रिंकू सिंह ने स्वर्ण और सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक अपने नाम किया। रिंकू ने 66.37 और सुंदर सिंह ने 64.76 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। तीसरे स्थान पर क्यूबा के खिलाड़ी रहे, भारत के अजीत सिंह चौथे स्थान पर रहे। अंक तालिका में भारत 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीतकर छठे स्थान पर है। अगर हम 2023 का एशियन पैरा गेम्स देखें तो उसमें सुंदर ने जीता था गोल्ड और रिंकू सिंह ने सिल्वर। इस बार थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन जाने माने पैरा जेवलिन थ्रो प्लेयर्स हैं और क्या कमाल का खेलते हैं।
देखिए, जब से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो में और उसके बाद से मैं समझता हूं कि इस फील्ड में बाहर आ गई। हर फील्ड में, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या दूसरे सामान्य खिलाड़ियों, सब ने जेवलिन थ्रो उठा लिया। और अब आप ये देखिए कि पिछली बार वो गोल्ड हुई है, सिल्वर या रिवर्स, यानी कि कंपटीशन कितना तकड़ा है कि हमें पदक से कम किसी पर भी हमें नहीं दिखना।
और टोक्यो में सुंदर सिंह ने भी ब्रॉन्ज जीता था देश के।
जी जी, तो मैं समझता हूँ कि जो खेलों में बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें सबको एक बराबर पैसा मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है और फिजिकल फिटनेस मिल रही है, तो आने वाले समय भारत का है
और किसी खेल को कम नहीं आंका जा रहा।
सभी खेलों में अब तो उन खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है जिसमें पदक की उम्मीदें हैं।
और कई बार जिस खेल के हमने नाम सुने भी नहीं है उनको भी इतना प्रचलित हो रहे हैं।
एक बॉल गेम थी, उसमें भी हमने पदक जीता था, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे खेलों को ढूंढना चाहिए जिसमें पदक ज्यादा से ज्यादा आ सके।
अब बात क्रिकेट के मैदान की। भारत ने 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया और सरताज बन गया। इस पर हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले ही विशेष की रिपोर्ट सुनते हैं।
It's India who won the Asia Cup for the 9th time.
इस टूर्नामेंट में अजय रही भारतीय टीम। भारत और पाकिस्तान के बीच कल का खिताबी मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। कुलदीप यादव की फिरकी और तिलक वर्मा की मैच विनिंग अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक बार फिर एशिया कप अपने नाम किया। इस हाई टेंशन वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 147 रन का लक्ष्य दिया था। कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम ने पावर प्ले में 36 रन बनाकर 3 विकेट भी गवा दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा ने संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए 69 रन की शानदार पारी खेली। तिलक ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर टीम को संभाला और जीत की नींव रखी। फिर तिलक को दुबे का भी अच्छा साथ मिला। भारत ने 2 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ एशिया कप के इस संस्करण में भारत ने पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक भी पूरी की। इस अवसर पर कल देश भर में षष्ठी में विजया दशमी मनाई गई। अगला एशिया कप अब 2027 में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तीसरी बार है जब भारतीय टीम अजय रहते हुए चैंपियंस बनी है। इससे पहले 2016 में जब T20 हुआ था, 2018 में वनडे में बिना कोई मैच हारे खिताब जीते।
लेकिन दिल डर रहा था क्योंकि 2023 का हमने विश्व कप देखा था, ODI का। भारत कोई मैच नहीं हारा था फाइनल से पहले, और अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से हमारे दिलों को तोड़ा, तो डर लग रहा था कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए। और कल ग्रेजुअली इसमें एशिया कप की बात करना चाहूंगा। पहली बार सन 1984 में आयोजित किया गया, क्योंकि 1984 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई, तो उन्होंने एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू किया। और पहला टूर्नामेंट भारत ने जीता वो राउंड रोबिन आधार पर था और विकेट कीपर पर बैट्समैन ओपनर सुरेंद्र खन्ना जो कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उन्होंने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और वो एशिया कप मैंने खुद अपनी आंखों से दूरदर्शन पर लाइव देखा था, तो तब से देखता आ रहा हूं। ये देखिए संस्करण जो है अब 2025 आ गया, तो मैं समझता हूं कि कल का जो मुकाबला था, मुझे डर इस बात का लग रहा था कि पहले दो बार जीत चुका है, पिछले 10 सालों में 8 सालों में भारत और पाकिस्तान ने इतना आपस में नहीं खेले जितना 14 दिन में खेले। तो मैं समझता हूं कि जब पहले दोनों जीत लिए तो डर लगने लगा कि अब पाकिस्तान की बारी हो सकती है, और पाकिस्तान ने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया था
क्योंकि एक शुरुआती जैसे बल्लेबाजी क्रम हमारा टूटा, उससे तो ऐसा लग रहा था कि बस सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे।
हम बहुत शुरुआत जब हमने टॉस जीत कर उनको आमंत्रित किया तो उन्होंने 84 रन पे पहला विकेट गिरा, 113 पर एक ही थे
जी।
तो मैं समझता हूं कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 200-250 के आसपास स्कोर खड़ा करेगा, भारत के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। हालांकि बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं ना कि लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी ढूंढकर उसके ऊपर पैर मारा अपना। उनके बैटर्स ने बाद में 113 के बाद जिस तरीके से पैनिक दिखाया, गलत शॉट खेले, 33 रन पर 9 के 9 खिलाड़ी आउट होकर वापस चले गए, पूरे ओवर नहीं खेल सके और 146 तक ही उनकी टीम सिमट गई।
पर देखा जाए तो अगर हम जब इंडियन टीम की बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले में भी इंडिया के जैसे 20 रन में 3 विकेट गिर गए
जी।
तो वो भी ऐसा था कि क्योंकि अभिषेक शर्मा से तो इतनी हम लोग अब आशाएं लेकर बैठे हैं कि वो हर मैच में मतलब अर्धशतकीय पारी तो खेलेंगे ही।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो किस मिट्टी की बनी है भारतीय टीम, क्योंकि कहते हैं ना जो समुद्र में तैरना जानते हैं वो कुएं और बावड़ियों में डुबकियां नहीं लगाते। भारतीय टीम में इतनी गहराई है, और अगर कल शर्मा जी का बेटा नहीं चला तो वर्मा जी का बेटा चला, तिलक वर्मा ने जीत का तिलक लगाया भारत के माथे पर, 9वीं बार एशिया कप कमाल कर दिया। पाकिस्तान ने इस चीज को देख लिया था कि ये लगातार दो बार हमसे जीते हैं, ये जब तेज गेंदबाजी की जाती है ईशान शाह अफरीदी के द्वारा उस गति का इस्तेमाल करते हैं, केवल दिशा दिखाते हैं या बल्ले पे सीधी आती है और छक्के लगा रहे हैं। तो इस बार उन्होंने रणनीति को परिवर्तित किया, उन्होंने गेंदों की गति को धीमा किया, थोड़ी लेंथ छोटी रखी, और यही कारण रहा कि बल्ले पर प्रॉपर तरीके से आई नहीं और शॉट खेल के 20 पे जब 3 हुए तो दिल डरा अभिषेक शर्मा, और इसके अलावा आप शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव आउट हुए। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर को पहली बार टेस्ट हुआ, अभी तक टॉप ऑर्डर रन बनाता रहा और उसने दिखा दिया कि मिडिल ऑर्डर में भी दम है, और रिंकू सिंह जो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, केवल फाइनल खेले और एक ही गेंद पे उन्होंने विजय शॉट लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया।
बिल्कुल, और देखा जाए तो कल तिलक और संजू सैमसन की जोड़ी बहुत अच्छी रही, उसके बाद तिलक और दुबे के बीच 60 रन की पारी खेलेगी, और सबसे बड़ी कमाल की बात क्योंकि हार्दिक पांड्या कल नहीं खेल रहे थे और दुबे का बल्ला भी चला और उन्होंने गेंदबाजी की भी शुरुआत की,
अच्छी गेंदबाजी करी।
और जी हाँ,
ऑप्शन नहीं था ना कि हार्दिक पांड्या नहीं थे तो गेंदबाजी किसी को करनी थी, वो शुभम दुबे ने की। और कहते ना दुनिया देखती है तो दिखा तो सही, कल भारत के तिलक वर्मा, संजू सैमसन और शुभम दुबे ने दिखा दिया, जो दो साझेदारियां हुई, उन साझेदारियों के बगैर भारत नहीं जीत सकता था, फिर भी अंत तक गया। फिर अंत में जाके जो 15 ओवर 15 16 17 18 इसमें 4 ओवर में जो भारत ने रन बनाए हैं, 47 रन बने, वो भारत को अपनी जीत की ओर ले गया, अंथा दबाव में आ जाता। अगर 15वें ओवर में रन न बनते, 15वें ओवर में हरीश राव को 17 रन पड़े, 16वें में अबरार को 11 रन पड़े, अफरीदी ने फिर अच्छा 17वां ओवर डाला, केवल 6 रन दिए, लेकिन उसके बाद हरीश रॉफ को 13 रन लेकर 18वें ओवर में भारत ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, 4 ओवर में 47 रन और जीत के करीब पहुंच गया भारत।
और पूरे टूर्नामेंट में कुलदीप यादव की तो फिर की चली ही है, और इसके साथ ही जब एशिया कप टूर्नामेंट खत्म हुआ है तो एशिया कप के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने मलिंगा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 18 मैच में 36 विकेट।
देखिए ट्रॉफी जिनके नाम होते हैं फिर उनके सारे रिकॉर्ड भी सामने आ जाते हैं, ये अगर भारत जीत जाता तो इन रिकॉर्डों की तरफ किसकी नजर नहीं जानी थी, और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के ईशान शाह अफरीदी 9 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर थे, लेकिन भारत का दबदबा फील्डिंग में भी, भारत ने कल अच्छी दिखाई, फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग तीनों में भारत ने पूरी तरह से दबाव बनाए रखा।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की पूरी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की।
I actually personally want to give my match fees of all the games which I have played in this tournament to the Indian Army.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करते हुए कहा कि नतीजा वही रहा और भारत जीत गया। इस बीच मैच के बाद कुछ ड्रामेटिक सिचुएशंस भी हुई। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के तुरंत बाद हुई घटना की निंदा की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कथित तौर पर टूर्नामेंट ट्रॉफी अपने साथ ले गए और इससे समारोह का मंच खाली हो गया और प्रशंसक स्तब्ध रह गए। हालांकि श्री सैकिया ने कहा है कि इसके बारे में हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे,
आईसीसी में शिकायत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस टूर्नामेंट में जो तीनों मैच हुए भारत और पाकिस्तान के, उसमें सब में इस तरह के नाटक हुए। पाकिस्तान ने कभी हैंडशेक का चक्कर डाला। जो कमजोर होते हैं ना, वो बहाने ढूंढते हैं, तो बहाने ढूंढे गए लेकिन वो बहाने काम नहीं आए। आखिर काम आई तो भारत की बैटिंग लाइनअप और भारत की स्किल जो ट्रॉफी लेकर आई।
बिल्कुल। और अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें तो महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कल से शुरू हो रहा है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। कल पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। तो अगर हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें, स्मृति मंधाना, स्नेह राणा और प्रतीका रावल, मतलब ये अनस्टॉपेबल है। और अगर इस साल में इनका जो परफॉर्मेंस देखा जाए तो लाजवाब है।
देखिए, एक बात मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप शुरू हुआ 1975 में, लेकिन महिलाओं का विश्व कप 1973 में शुरू हो गया था। ये ज्यादातर श्रोताओं को शायद इस बात का आभास नहीं है। और ये तब राउंड रोबिन आधार पर हुआ था। 20 जून को पहली गेंद डाली गई थी, इंग्लैंड ने इसका आयोजन किया था और तब से लेकर अब तक भारत दो बार फाइनल में भी पहुंचा है, एक बार 2005 में और एक बार 2017 में। दोनों बार मिथाली राज कप्तान थी। पहली बार हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, दूसरी बार हम इंग्लैंड से हारे। और अब जो भारतीय टीम है इसलिए मजबूत है कि 2017 में जो भारतीय टीम थी उसमें हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा अभी भी भारतीय टीम में खेल रहे हैं। कितना अनुभव है। तो निश्चित तौर पर कल जो श्रीलंका के साथ मुकाबला होगा, श्रीलंका के कप्तान है जो अट्टापट्टू, वो थोड़ी सी एक्सपीरियंस होल्डर है, 509 रन बनाए हैं अभी तक उन्होंने, लेकिन बाकी टीम नई है। तो भारत को मुश्किल आनी नहीं चाहिए इस मुकाबले को जीतने में। पहला मुकाबला गुवाहाटी में, असली टक्कर भारत को मिलेगी 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से, 12 को ऑस्ट्रेलिया से और 19 अक्टूबर को इंग्लैंड से।
चलिए, इस पे अगर हमने वो जीता है तो इसमें भी पूरी उम्मीदें हैं हम सब की,
होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा भारत को।
और निशानेबाजी में भी आज भारत ने परचम लहराया। नई दिल्ली में जूनियर विश्व निशानेबाजी में आज भी भारत ने 7 पदक जीतकर दबदबा बनाए रखा। महिलाओं की 10 मीटर राइफल में ओजस्वी ठाकुर ने स्वर्ण, हृदया श्री कोंडूर ने रजत, शांभवी क्षीरसागर ने कांस्य पदक जीते। इसी स्पर्धा में पुरुषों में हिमांशु ने स्वर्ण और अभिनव शॉ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मुकेश नेवल्ली ने रजत और सूरज शर्मा ने कांस्य पदक जीता। कुलविंदर जी, भारत 6 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है, तो देखिए कितना सटीक निशाना लगा रहे हैं हमारे।
देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत का जो निशानेबाजी का इतिहास है वो तो अधिकतर पदक, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो या ओलंपिक में भी, आपको याद है 2004 में एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल जीता था। तो तब के बाद से निशानेबाजी में क्रांति आई है।
अभिनव बिंद्रा,
उसके बाद जीतू राय हैं, विजय कुमार हैं, इसके बाद ये आप देख लीजिए अभी मनु भाकर जिसने 2 मेडल जीते हैं पेरिस में। तो मैं समझता हूँ कि भारत का भविष्य इसमें बहुत उज्ज्वल है और ये तो अभी कम है, और ज्यादा पदक आएंगे भारत के पास और उम्मीद करते हैं कि आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप या बड़े टूर्नामेंट होंगे उसमें भारत के निशानेबाज स्टीक निशाने लगाएंगे।
और अब जाते जाते टेनिस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और जापान के उनके जोड़ीदार ताकेरू युजुकी जापान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सेमीफाइनल में उन्होंने क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग की अमरीकी जोड़ी को बेहद रोमांचक मैच में 4-6, 6-3, 18-16 से मात दी। कल फाइनल में बोपन्ना और युजुकी जोड़ी का सामना फ्रांस के ई रॉजर वेस्लिन और मोनाको के ह्यूगो निस्से होगा। मतलब रोहन बोपन्ना अपने एक एज से ऊपर उठकर क्या उनका टेनिस चल रहा है और क्या खेल रहे हैं वो।
मैं समझता हूँ कि उनका कोई मुकाबला नहीं, इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं और सबसे तेज जो उन्होंने स्मैश भी लगाया है वो भी अभी उन्हीं के नाम रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि एक पदक तो पक्का हुआ, फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल में जीतने की भी उम्मीद कर सकते हैं।
और अखिल भारतीय टेनिस संघ ने 14 से 16 नवम्बर तक बेंगलुरु में होने वाली बिली जीन किंग कप प्ले ऑफ के लिए आज सहजा यमलापल्ली की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय चयन पैनल ने रैंकिंग के अनुसार सहजा, श्रीवल्ली, भामी दीप्ति, अंकिता रैना, रिया भाटी और युगल विशेषज्ञ प्रार्थना थोमेरे को चुना। और अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। कुलविंदर जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन चर्चा की हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।
नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। एक बार फिर से गुड इवनिंग।